आते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी,
शांति। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का प्रश्न है 45। माया को एक शब्द से मूर्छित करो और वह शब्द कौन सा? तो कौन सा शब्द है वो? मेरा बाबा। तो उत्तर है बाबा। जहां बाबा है वहां माया नहीं। ये जो प्रश्न है ये लिया गया है 13 जनवरी 1978 की मुरली से। तो अभी हमने जो गीत सुना कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, खाते नहीं, सोते नहीं, खेलते नहीं, नाचते नहीं और सुलाते नहीं। तो भक्ति मार्ग का ये गीत है जिसका जिक्र मुरली में भी होता है। तो कितना प्यार से भगवान का आह्वान किया गया है। हम भी बाबा मिलन मनाते हैं, सीजन होता है, बाबा की डेट्स फिक्स है और कितना सुंदर एक वातावरण बन जाता है। जिस दिन बाबा आने वाले हैं उस दिन की हम प्रिपरेशन उसके पहले ही कर देते हैं, मौन रखते हैं और उस प्रभु मिलन की तैयारी में लग जाते हैं और प्रभु मिलन हम करते हैं। लेकिन यहां पर बाबा शब्द का यूज कैसे करना है ये बाबा ने बताया है। तो बाबा जहां है वहां माया नहीं है। अगर दिल से, संबंध से, स्नेह से, दिल से, संबंध से और स्नेह से बाबा कहा और माया भागी। तो यहां पर बाबा ने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कितना भी बड़ा डाकू हो लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बड़ा डाकू भी बकरी बन जाता है। तो बाबा शब्द निकलना और डाकू का पकड़ा जाना। माया जो सेकंड पहले शेर के रूप वाली होती है वह सेकंड बाद बकरी बन जाती है। तो इस साधन को सदा साथ रखो। बाबा ने कहा ये क्या है, आपके सेफ्टी का साधन है, तो इसको सदा साथ में रखो तो क्या होगा, माया भाग जाएगी। बाबा भूला माना सब कुछ भूला। साधन सहज है, सिर्फ बार बार यूज करने का तरीका आना चाहिए। बाबा ने कहा ये साधन यूज करने का तरीका आना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन हो इसको कहा जाता है यूज करने का तरीका आता है। सदा यह याद रखो, मेरा बाबा, जब मेरा बाबा आ गया तो माया भाग गई। तो देखो इस प्रश्न में बहुत सुंदर एक बात छिपी हुई है कि कौन सी, कि इस जादूगी चिराग जो हमारे पास है कौन सा, बाबा शब्द, उसको यूज कैसे करना है, कैसे समय पर उससे हेल्प लेनी है और दूसरों की भी हेल्प करनी है। तो यहां पर बात है फिर से कि माया को मूर्छित करने की। पिछली बार हमने एक स्टोरी सुनी थी लक्ष्मण और मेघनाथ की, और उसी स्टोरी में का एक पार्ट है, उसका ही एक पार्ट है कि मेघनाथ ने क्या किया था, इंद्रजीत ने क्या किया था, लक्ष्मण को कुछ समय के लिए मूर्छित किया था। एक अस्त्र, विशेष अस्त्र चला करके लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था। फिर श्री राम जी ने हनुमान को भिजवाया और संजीवनी बूटी लाने के लिए। शक्ति शैल, इस बाण का, इस अस्त्र का यूज करके लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित किया था। तो मूर्छित होना माना ही अपने लक्ष्य से हट जाना। हम मूर्छित कब होते हैं, जब अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। तो फिर श्री राम जी को क्या करना पड़ता है, संजीवनी बूटी लानी पड़ती है, वही हनुमान जी के द्वारा, वो तो सेवाधारी है ना करण करावन हार तो श्री राम है। तो श्री राम जी ने क्या किया, सेवाधारी को भेजा हनुमान जी को और संजीवनी बूटी लाई। तो आज बाबा हमें विधि सिखा रहे हैं, अब समय अभी जो है माया को मूर्छित करने का है। अभी हमें मूर्छित नहीं होना है, अभी माया को मूर्छित करना है। और फिर जैसे ही संजीवनी बूटी लाई गई और फिर लक्ष्मण जी मूर्छित से सुरजित हो गए और फिर मेघनाथ पर विजय प्राप्त किया, जो रावण का प्रथम कौन था, सेनानी था, जिसको रावण ने पहले ही युद्ध में भेजा था अपने पुत्र को, और ये पहली विजय थी। तो पहली विजय अगर हमें प्राप्त करनी है तो कौन सा शब्द यूज करना है? बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। तो बाबा ने हमारे साथ प्रॉमिस किया हुआ है, जब नए लोग हमारे सामने आते हैं तो हम उनको बड़े नशे से उनको ये बात बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः तदात्मानं सुजानः। इस श्लोक का अर्थ हम उनको बताते हैं कि भारत में जब जब अति ग्लानि होती है धर्म की, तब तब मैं आता हूं, ये भगवान का प्रॉमिस है और भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, हम उनको बताते हैं। लेकिन हम जानते हैं बाबा को कैसे आह्वान किया जाए और बाबा को कैसे बुलाया जाए। जब कोई सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, तभी उस बाबा को बुलाना चाहिए। जब बहुत बीमार है, हे बाबा, हे भगवान, आ जाओ। मैंने हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग भाई जी थे, उनके साथ था आईसीयू में, तो वहाँ और भी पेशेंट थे, उनकी भी सर्जरी हुई थी जो अपने भाई की भी हुई थी। लेकिन मैं देख रहा था उन लोगों को, वो तड़फ रहे थे, हे भगवान, हे ईश्वर, उनके मुख से आवाज आ रही थी। फिर मैंने जो दादाजी थे उनको पूछा कि वो क्यों इतना चिल्ला रहे, तो उन्होंने कहा उनको दर्द हो रहा है। फिर मैंने कहा आपको भी तो हो रहा है, आपकी भी तो सेम सर्जरी हुई है। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा बाबा है ना। मैंने इतना डिफरेंस मैंने देखा, सेम सर्जरी हुई है, सेम एज है पेशेंट का, लेकिन वो व्यक्ति चिल्ला रहा है हे भगवान, हे ईश्वर, और जो अपना पेशेंट है वो बाबा की याद में मुस्कुरा रहा है, कोई दर्द नहीं, जैसे कि उनको और एक बीमारी हुई है मुस्कुराने की। माना ये प्रैक्टिकल अनुभव मैंने देखा कि जब बाबा साथ में है तो कितना भी बड़ा दुख है, दर्द है, उससे बाबा छुड़ा देता है। तो इस हाँ, तो हमें सिर्फ समय, वो जो ताकत बाबा देता है, तो केवल परिस्थिति, शरीर की बीमारी या एग्जाम, जो परीक्षा को जाना ही है, एग्जाम हॉल में एंटर करना ही है, तब बाबा याद आए, नहीं। जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तभी भी हम भगवान का कितने प्यार से आह्वान कर सकते हैं, अभी हमने गीत में सुना। तो फिर बाबा का बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सदैव हमारे साथ रहेंगे और माया दूर से ही भाग जाएंगे। तो मेरा प्रैक्टिकल भी अनुभव है कि जब मैं स्कूल में था, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो जब मेरी एग्जाम होने जा रही थी, वाइवा एग्जाम इंग्लिश के, तो बहुत डर लगा अंदर से कि अब क्या होगा। तो आंखें बंद हुई और अंदर से निकला कि बाबा अब प्लीज, कि जब अब मेरा नंबर अनाउंस होने वाला है कि नंबर, और कमलेश अभी आ जाओ, हाजिर हो जाओ। तो मैंने बाबा को याद किया और उसी समय टीचर का ध्यान उन बच्चों पर गया कि जो मस्ती कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा, तो अभी आपकी एग्जाम होगी। जबकि उनका नंबर तो लास्ट में था, सीरियल ही चल रहा था, लेकिन इस सीरियल को भी कैसे बाबा ने मोड़ दिया और दिल में एक खुशी हुई और थैंक्स बाबा निकला। और जो मेरे बाजू में मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, उन्होंने भी देखा कि सचमुच इसके शिव बाबा ने तो इसको बचा लिया। वाइवा हुआ, लेकिन टाइम मिला ना, मुझे टाइम मिला, उस दिन नहीं हुआ जिस दिन होना था। तो ये है मेरे बचपन के अनुभव। एक बार टीचर ने एक्चुअली जो शुद्ध लेखन लिखना होता है कि रोज लिख के लाना होता है 10 लाइन, तो उस शुद्ध लेखन चेक करने के लिए अगर टीचर चेक करे रोज का रोज, तो 70 स्टूडेंट है, पूरा पीरियड ही उसमें चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, हर लाइन का एक मॉनिटर तय किया था, वो मॉनिटर उस लाइन की चेक करेगा है और अपनी खुद की डायरी टीचर के सामने रखेगा। तो मैंने अपने लाइन की चेक करवा दी, मैं मॉनिटर था क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग अच्छा था। तो फिर मैंने अपनी लाइन का चेक किया और अपनी डायरी लेके टीचर के पास गया और कान में बता दिया कि आज है ना मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं कल लिख के लाऊंगा और आपको तो पता ही है मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है। तो टीचर मुस्कुराई और फिर बाद में मेरे फ्रेंड ने देख लिया कि अरे इसने तो लिखा भी नहीं है और मार भी नहीं खाई है, ऐसे कैसे हुआ। तो वो गया टीचर के पास, तो टीचर बोलती है वो कल बीमार था ना इसलिए नहीं लिया। तो ये बाबा शब्द ने बहुत बार बचाया है। बात छोटी है या बड़ी है, विघ्न बड़ा है या छोटा है, तो ये बाबा शब्द हमें बचा ही देता है। तो ये बाबा शब्द कि जैसे राम और रावण की कहानी हम सुनते हैं कि राम जब रावण की तरफ श्रीलंका में जाना होता है तो बीच में तो पानी होता है लंका, तो वहां पर जाने के लिए बीच में समुन्द्र है, तो उनको क्या बनाना था, सेतु बनाना था। तो वो क्या कर रहे थे, हर पत्थर पर राम लिख करके पानी में डाल रहे थे और पत्थर तो तैर रहा था। तो ये न्यूज उस समय भी मीडिया बड़ा तेज था, तो ये न्यूज रावण तक पहुंच जाती है, तो रावण तक एक बात पहुंच जाती है, तो रावण बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या हो रहा है, मेरा भी नाम लिखने से पत्थर तैरेगा, क्यों नहीं तैरेगा। तो वो जाते हैं समंदर किनारे और रावण लिखते हैं, पत्थर उठा के पानी में डालते हैं और पत्थर तैर जाता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रावण की जय जयकार करते हैं आसुर और चले जाते हैं। फिर ये अभी पर्सनल मीटिंग है, फिर मंडोदरी रावण से पूछती है ऐसा आपने क्या किया, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका नाम लिखे और पत्थर तैर जाए, मुझे बताओ आपने क्या किया था। तो रावण बोलता है किसी को बताना नहीं। मैंने भले पत्थर पर रावण लिखा लेकिन उस पत्थर को पानी में डालते समय पत्थर को सौगंध दिलाई कि हे पत्थर तुम्हें राम की सौगंध है अगर तुम तैरा नहीं। तुम्हारा दिल से अगर रावण भी राम को याद करता है तो राम बंध जाता है और उसको उसकी सहायता करनी पड़ती है, सिर्फ सच्चे दिल से उसको पुकारना है, उसको बुलाना है, और वो हजीरा हुजीर भोलानाथ शिव बाबा हाजिर हो ही जाता है। तो इसी तरह एक युवक था कि जो थोड़ा आलसी हो रहा था, अपने घर में मम्मी पापा के साथ रहता था, खाता था पीता था सोता था, बस काम धंधा तो कुछ कर नहीं रहा था। तो उसके मम्मी पापा ने कुछ विचार किया और बोला अभी आप है ना हमारे घर से निकलो, बाहर निकलो, कुछ काम धंधा करो और खुद के पैरों पर खड़ा हो जाओ। तो वो युवक घर से बाहर निकलता है और रास्ते जाते जाते उसको एक आश्रम मिलता है जहाँ पर एक सदगुरु होते हैं और उनके बहुत सारे चेले भी होते हैं। वो देखता है कि ये लाइफस्टाइल अच्छा है, दान धर्म का आता है, खाना है पीना है और सोना है। तो वो गुरुजी के पास जाता है, बोलता है मुझे भी आपके साथ रहना है, मुझे भी भगवान का नाम में याद करना है और आपके जैसा जीवन जीना है। तो वो कहते हैं ठीक है आ जाओ। तो बड़े मजे से वहां पर रहता है, गेरुए वस्त्र धारण करता है, मस्त भोजन करता है, सोता है। और फिर कुछ दिनों के बाद उसके परीक्षा की घड़ी आ जाती है, एकादशी आ जाती है। वो डाइनिंग की तरफ जाता है तो उधर कुछ भी नहीं है, अब क्या करे। तो वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी ऐसे क्या हुआ, आज तो कुछ भी नहीं बना है, मुझे तो भूख लगी है। तो वो कहते हैं कि देखो ये तो नियम है, उपवास तो रखना पड़ेगा। वो कहता है देखो मैंने जीवन में कभी भी उपवास नहीं किया है और मैं मर जाऊंगा अगर नहीं खाऊंगा तो। और वो रोने लगता है, तो गुरुजी को दया आती है, बोलते ठीक है लेकिन किसी के सामने नहीं, मैं तुम्हें कुछ साधन सामग्री देता हूं, तुम जंगल में जाके पकाना, लेकिन हाँ खाते समय भगवान को भोग लगा के जरूर खाना। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जो भी साधन सामग्री है लेकर जंगल की ओर बढ़ता है, जंगल में जाता है, अच्छा सा भोजन बनाता है। फिर उसको याद आता है कि मुझे भोग लगाना है, तो बड़े प्यार से श्री राम जी को बुलाता है कि हे प्रभु आ जाओ, मैंने आपके लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया है। ऐसे वो आरती गाता है आंखें बंद करके, और सचमुच राम जी प्रकट हो जाते हैं। राम जी प्रकट होते हैं और उसके उसने जो भी बनाया हुआ है वो भोग स्वीकार कर लेते, खा लेते पूरा के पूरा, संतुष्ट हो जाते। अब करे क्या, भूख तो लगी है। वो फिर गुरुजी के पास जाता है, आपने कहा था भोग लगाओ, मैंने भोग लिया, राम जी तो पूरा खा गए, अभी मुझे और चाहिए। तो वो कहते चलो भोला है, तो और उसको साधन सामग्री डबल देते हैं। वो फिर जंगल में जाता है, फिर राम जी को बुलाता है, तो राम जी फिर प्रकट हो जाते हैं, और इस बार नई मुसीबत, वो सीता जी को भी साथ लेके आते हैं। अब दो लोगों का भोजन बनाया हुआ, वो दो लोग खा जाते हैं, दो लोग खा जाते हैं। ये बेचारा शिष्य तो अभी भी भूखा रह गया। वो फिर गुरु जी के पास जाता है कि गुरु जी वो तो दोनों आए और खा गए, अभी मुझे और चाहिए। तो वो कहते ले लो वहां से, वो लेके जाता है, जंगल में जाता है, फिर से भोजन बनाता है, फिर से बुलाता है, हे राम आओ और भोग स्वीकार करो। अब इस बार राम सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी आ जाते। अब तीन लोगों का बना हुआ भोजन वो तीनों लोग खा जाते। अब ये फिर चौथी बार गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी मुझे और चाहिए। तो वो कहते ले लो वहां से। तो फिर गुरुजी थोड़ा क्या करते हैं, बोलते अपने शिष्यों को बोलते कि चलो हम देखते हैं कर क्या रहा है, एक व्यक्ति तो तीन लोगों का तो भोजन खाएगा नहीं, ये कर क्या रहा है, हम देखते हैं। तो उसके पीछे पीछे जाते, तो ये बैठ जाता है और सीधा प्रार्थना करता है कि हे राम जी, हे सीता मैया, आ जाओ आ जाओ। और सचमुच इस बार राम सीता और लक्ष्मण के साथ और एक व्यक्ति ऐड हो जाता है, हनुमान जी भी आ जाते। आ तो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं भोग कहाँ है, भोग तो है ही नहीं, बुला तो लिया। वो बोलता है मुझे पता था आप और एक्स्ट्रा लेके आओगे, अभी आप ही बनाओ और मुझे खिलाओ। तुम देखो भगवान भी बंध जाता है भक्त के प्यार में, भक्त के प्यार में, उसने बनाया नहीं होता खाना। तो फिर सीता मैया भोजन बनाने लगती है, तो हाँ तो सारा दिन तो भूख तो लगी है ना, भूख के लिए तो सारा दिन भी। तो फिर क्या होता है कि वो गुरुजी आते हैं वहां पर, बोलते हैं हमें दिख तो कोई नहीं रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो कहते कि मैं तो श्री राम जी से बात कर रहा हूँ। तो फिर वो राम जी से बात कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे ही दिखाई दे रहे हो, हमारे गुरु जी तो इतने पुराने हैं, इतने तपस्वी हैं, उनको आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो गुरु राम जी ने कहा कि उनमें ना सब बात अच्छी है लेकिन सरलता का गुण नहीं है, आप बताओ उनको। तो गुरु जी को बताता है शिष्य कि राम जी का कहना है आप में तो बहुत अच्छे सद्गुण तो है लेकिन सरलता नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहे। तो गुरुजी को रियलाइजेशन होता है और वो रोने लगते। तो जैसे ही उनमें वो सरलता आती है तब उनको भी श्री राम दिखाई देते। तो देखो भक्ति मार्ग की ऐसी कहानियां हैं कि भगवान बुलाता है, लेकिन बुलाने के लिए क्या चाहिए, क्लीन और क्लियर चाहिए हार्ट, बुलाने वाला हार्ट। हाँ तो कोई भी अगर कंडीशन है बीच में तो नहीं आएगा। तो भगवान को बुलाने का तरीका क्या है कि खुद को आत्मा समझना है, सरलता अंदर धारण करनी है। सिर्फ परीक्षा आएगी, एग्जाम आएगी, सिर्फ कोई शारीरिक की बीमारी आएगी तब बाबा याद आए, नहीं। बाबा को बुलाना तो है ही, उसकी विधि बाबा ने बताई हुई है। हम रिंगटोन भी रख लेते हैं कि मेरा बाबा आ जाओ, जो बाबा के कहे हुए माँ के, और मैं आपके सामने हाजिर हूं। मोबाइल में रिंगटोन भी रख लेंगे, मुख में भी, भक्ति मार्ग में भी देखते हैं। हम बुजुर्ग होते हैं जो बैठ नहीं सकते, तो वो क्या बोलते, हे राम हे ईश्वर हे भगवान कहते हुए बैठेंगे। उठते समय भी नाम लेंगे, लेकिन उतना दिल से। हमें मुख से बाबा बाबा नहीं कहना है कि हे शु बाबा, मुख से कहने की दरकार ही नहीं है। शु बाबा गुड मॉर्निंग, शु बाबा गुड नाइट, जोर जोर से कहने की, मुख से कहने की बात ही नहीं है। दिल से बाबा को कैसे बुलाना है, दिन में बाबा का कितनी बार आह्वान करना है, सुबह शाम, बस हो गया, भोजन करते समय, और कौन कौन सा समय है जब हम बाबा का आह्वान कर सकते हैं। जब हम ऑफिस में जाते हैं तब भी बाबा का आह्वान कर सकते हैं कि बाबा आ जाओ मेरे बाजू में। हाँ, बाबा को हमेशा कैसे साथ में रखना है और कैसे विशेष समय पर उसका आह्वान करना है, उसकी विधि आज बाबा ने हमें इस प्रश्न के द्वारा सिखाई है, क्लियर की है। देखो, बाबा तो सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, दादियां भी कहते हैं, लेकिन दादी जब बाबा कहती है, गुलजार दादी देखो, जानकी दादी देखो, जो भी बड़ी दादियां हैं, वो जब बाबा कहते हैं तो वो बाबा यहाँ हमारे भी अंदर यहाँ प्रवेश कर जाता है। हम भी बाबा कहते हैं, लेकिन उस बाबा शब्द के पीछे एक अथॉरिटी है कि जो तीन शब्द बाबा ने बताए कि बाबा कहना है, बुलाना है, कैसे बुलाना है, दिल से, संबंध से और स्नेह से। अगर संबंध हमने जोड़ा ही नहीं है उसके साथ, अभी तक लौकिक मम्मी पापा भूले ही नहीं है, उनमें ही हमारा मोह है, तो इस बाबा को हम हाजिरा हुजूर नहीं कर सकते। ये अनुभव जो है, साकार के अनुभव जब हम सुनते हैं तो ना दादी ने बताया हुआ है, गुलजार दादी ने, कि हम लगभग उनके जो हॉस्टल थी उसमें 80 लोग थे, उनकी ब्रह्मा बाबा ने कैसी पालना की, मम्मा बाबा ने कैसे पालना की, वो अनुभव वो शेयर करती है कि एक एक की मच्छरदानी में आकर वो देखते थे कि मच्छर है क्या अंदर, उनसे हैंडशेक करते थे, उनको गुड नाइट करते थे, उनके साथ प्यार से गुड नाइट करके उनको सुलाते थे। बाबा ने उनको क्या कहा, आप हमारे चैतन्य ठाकुर हो। दादी ने कहा, ऐसी पालना दी जो लौकिक माता पिता को तो हम भूल ही गए, भूल गए पूरा, और ये बाबा है, बस यही हमारा माता पिता है, वो फीलिंग अंदर में आ गई। तो बाबा ने उनसे जो तपस्या करवाई, बाबा ने उनको जो पक्का करवाया, तो हमें भी वो अभ्यास करना है। बाबा हमारे भी मच्छरदानी में मच्छर है क्या देखने के लिए आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, पहले तो बच्चा बनना पड़ेगा, तो और अपने आप को आत्मा समझकर उसके सामने बैठना पड़ेगा, तभी वो बाबा आएगा और हमारी पालना करेगा। और जो भी मच्छर है काट रहे हैं उनको देखो, जब छोटी समस्या आती है तो हम क्या कहते हैं, मम्मी, माँ याद आती है, काटा चुभा या कुछ छोटी सी समस्या आई तो हम बोलते हैं मम्मी। लेकिन हम हाईवे से गुजर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और बड़ा सा ट्रक जोर से आवाज करते हुए बाजू से गुजरता है, तब क्या बोलते हैं, बाप रे बाबा। तब कौन आता है, बाबा याद आता है। मतलब छोटी छोटी बातों में मम्मी को याद करना होता है, और जब बड़ी बात आती है तब बाबा याद आता है। नेचुरली, वो नेचुरली संस्कार है, हमें पता है कि इस समस्या से वो मम्मी नहीं छुड़ाने वाली, ये बाबा ही छुड़ाने वाला, इसीलिए उस समय हमें बाबा याद आता है। अच्छा, ओम शांति।